सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज भी हमारे पास काफी वक्त है, बहुत ही बड़ा खुला मैदान है, तो आज हम लोग बहुत ही निश्चिंतता के साथ सोचा कैसे जाना चाहिए इस विषय पर बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर है जो एक सूचना के रूप में ही मैं आपको देना चाहूंगा, स्पेशली खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी बैठ रहे होते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मुझे यह बात स्पष्ट इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जब मैं इस तरह की खबरों की बात करता हूं और मैं यह तथ्य स्पष्ट नहीं करूंगा तो मुझे इस बात का भय रहता है कि कहीं आप सब यह न समझ लें कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हाँ दूसरे एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की संभावना रहती है। खबर बस छोटी सी है, रेडियो न्यूज में ये बात थी भी कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और मिस्र के राष्ट्रपति हमारे अभी जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होते हैं, होने वाले हैं। हमेशा गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है और सच पूछे तो यह एक प्रकार से एक कूटनीति भी है। कूटनीति इस मायने में है कि जिन देशों के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर मानते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपने यहां आमंत्रित करके एक अतिरिक्त सम्मान देते हैं और एक बड़ी बात है। कूटनीति का मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई घटिया चाल हो रही है या कुछ रचा जा रहा है, गलत नीति है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है ना, डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत ये बात होती है। क्योंकि हम अपने शत्रु देश के हेड को तो बुलाने में थोड़ा सा संकोच करेंगे, कोई भी ऐसा करेगा, तो मिस्र के राष्ट्रपति इस बार आ रहे हैं। एक बात और थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप जानते हैं कि भारत अभी G20 का अध्यक्ष है, भारत में ही साल भर तक मीटिंग्स हो रही हैं, होनी शुरू हो गई हैं, तो जो मिस्र है उसे एक अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है, अतिथि राष्ट्र के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि G20 का भारत अध्यक्ष है, मिस्र को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है और इसी मिस्र को हम अपने यहां के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। जी हां, मिस्र को ही मैं कह रहा हूं, उनके राष्ट्रपति को बुलाने का मतलब है कि संपूर्ण मिस्र के नागरिकों को हम अपने गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड में आप कह लीजिए कि अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। जानबूझ करके मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से बताई है क्योंकि इनके सांकेतिक जो अर्थ होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप उसके महत्व को भी समझ सकेंगे, अदरवाइज तो एक बिल्कुल कोई स्केलेटन जिसको कहते हैं कंकाल जैसी सूचना बनकर रह जाती है कोई भी बात। दोस्तों, अब मैं सीधे सीधे मुख्य विषय पर आता हूं। कल भी आप लोगों के बहुत मेल मिले हैं, मेरी उम्मीद से बहुत बाहर के मेल, बहुत मेल्स, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब उसमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता रहे हैं और मैं उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान रख रहा हूं, मैं उन्हें नोट करता जा रहा हूं। इसलिए एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स के आंसर आपको ईमेल के जरिए न मिले, तो ये मान करके चलिएगा कि अगर ईमेल के जरिए उत्तर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब है कि डेली ऑडियो लेक्चर में आपकी समस्याओं का समाधान जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आप विश्वास रखें, जरूर किया जाएगा। लेकिन सीधे सीधे नाम लेकर के आपकी समस्याओं की चर्चा करके कि नहीं कि उन्होंने ये समस्या पूछी थी तो उसका ये उत्तर है, उनकी ये समस्या थी तो उसका ये उत्तर है, उसका कारण है, कारण यह है कि आपकी समस्या एक हो सकती है लेकिन उसका समाधान एक नहीं है। आप आगे जाकर के समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है विचार करना, कैसे आप विचार करेंगे। और इसके बारे में गलत फहमियां भी बहुत हैं, आप कुछ कह देते हैं तो आपको लगता है कि मैंने विचार किया, बात बात में हम कहते हैं ना कि मेरे ऐसे विचार हैं, मेरे ये विचार हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, नहीं आप ऐसा सोचते नहीं हैं। होता क्या है कि हमारे दिमाग में पहले से ही एक डेटा भरा हुआ है, ये डेटा किसी भी वजह से भर जाता है, जैसे कंप्यूटर में डेटा रहता है ना, तो कंप्यूटर में जो डेटा होगा आप वही प्रोवाइड कर सकेंगे, नया कुछ भी नहीं रचा जा सकेगा, हमारे दिमाग में भी उसी तरह से डेटा भरे हुए हैं और जब किसी विषय पर कुछ प्रोवाइड करना होगा तो हम वही प्रोवाइड करेंगे जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। तो फिर हमारा दिमाग क्या कर रहा है, वो क्या रच रहा है, वो क्या सोच रहा है, कंप्यूटर तो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन हम तो सुपर कंप्यूटर हैं, हम तो सोच सकते हैं। और हम सोच नहीं पाते, भरे हुए डेटा कोई प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यही हमारे विचार हैं। यूपीएससी यही तो देखना चाह रहा है कि आप भरे हुए डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी कॉपी पर या इंटरव्यू बोर्ड के सामने, या कुछ सोच समझ भी रहे हैं। और बिल्कुल आपके उत्तर से यह पता लग जाता है कि आपने इस विषय को सोचा समझा है या इस विषय को रटा हुआ है। और दोस्तों, अभी के समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं सतर्क करना चाहूंगा कि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। एग्जामिनेशन की तैयारी कह लीजिए, बहुत बड़ा बाजार बन गया है। आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। प्राइस वार जैसी छिड़ी हुई है, हम इतने में, हम इतनी छूट। ठीक है, चलिए, अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, उनकी गलती मैं नहीं मानता। बाजार काम ही इस तरीके से करता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्या दूसरे एग्जामिनेशन के भी बाजार काम कर रहे हैं? जो वस्तु हैं उनके भी बाजार काम कर रहे हैं, जो सेवाएं हैं उनके बाजार भी काम कर रहे हैं। तो बाजार तो अपना काम करता रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब होगी जब आप उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने लगेंगे, वो प्रॉब्लम होगी। तो आप जब भी इसके बारे में निर्णय लें, किसी भी आप इंस्टीट्यूट के बारे में निर्णय लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में निर्णय लीजिए, इंडिविजुअल मेंटर के बारे में निर्णय लीजिए, आप किताब खरीद रहे हैं उसके बारे में फैसला कीजिए, आप यूट्यूब चैनल पर किसी का लेक्चर सुन रहे हैं उसके बारे में फैसला कीजिए, किसी के नोट्स खरीद रहे हैं उसके बारे में फैसला, किसी के बारे में भी आप फैसला करें, तो बस केवल एक बात ध्यान में रखें कि ये जो मैं करूंगा, मेरा यह करना मुझ में कितनी ज्यादा विचार की शक्ति पैदा कर पाएगा, विचार की शक्ति पैदा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीधे मुझे चीजें प्रोवाइड कर देगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, और मेरे सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसके माध्यम से। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं आज, खासकर जैसे एक चट्टान है, चट्टान पर खेती नहीं की जा सकती है, आप जानते हैं, वनस्पतियां भी नहीं उगती हैं, चट्टान है। चट्टान में इसलिए नहीं उगती क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं है, सरंध्र होने चाहिए ना, छिद्र होने चाहिए, स्पेस तो होनी चाहिए। आपके पढ़ने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें स्पेस बचा रहे, और जब हम चीजों को एकदम रट्टा 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 लगाने लगते हैं तो स्पेस नहीं रह जाती है। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो उनमें सरंध्र खत्म हो जाते हैं, उनके चट्टान बन जाता है दिमाग, और ऐसा दिमाग कभी नया सोच नहीं सकता। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सोच लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपके पास अगर पढ़ने का सही तरीका है तब आप इसका सही रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं उन पर आगे चल करके हो सकता है कि बातें करूं। अब आप देखिए कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसी के जवाब दे रहा हूं, और आप लोगों में से जिनके भी प्रश्न होंगे वो बड़े आराम से इसे समझ भी जाएंगे। शुरुआत याद करने की कोशिश कीजिए कि जब आप तीसरी चौथी पांचवीं में थे और इसके बाद आपने दसवीं तक की पढ़ाई की, इसके बाद आपने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया, आर्ट्स कॉमर्स, और इसमें चले गए, और इसके बाद फिर इंजीनियर डॉक्टर और आप बनते चले गए। लेकिन जो आपकी टेंथ तक की पढ़ाई थी वो सबकी एक ही जैसी थी, और लगभग हमारे पूरे देश की पढ़ाई लगभग एक ही जैसी है। हम विषयों की बात कर रहे हैं, किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मजेदार बात यह है कि ये जो विषय है जो आप पढ़ते हैं ना, दुनिया के सारे देश पढ़ते हैं, विषय यही पढ़ते हैं, वो अपने अपने देश के पढ़ते हैं। आप अपने भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वो अपने देश का भूगोल पढ़ेंगे, आप अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे तो वो अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन सिद्धांत तो वही होंगे, चाहे भूगोल के सिद्धांत हों आपके चाहे उनके, सिद्धांत तो एक ही होंगे ना। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जब अमेरिका वाले पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत तो वही रहेंगे लेकिन वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कोई तो कारण होगा कि पूरी दुनिया इसी इन्हीं विषयों की पढ़ाई कराती है शुरू में, और एक पर्टिकुलर पढ़ाई कराने के बाद फिर वो स्ट्रीम के लिए कहती कि तुम वहां जाना चाहते तो ये विषय ले लो। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत स्पष्ट है कि ये जो हम विषय पढ़ते हैं दसवीं तक, ये हमारी जमीन का निर्माण करते हैं, जमीन का निर्माण करते हैं। ये विषय नहीं है, ये रटने के विषय नहीं है, ये वो विषय है जो सोचने विचारने की नींव का काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोचने विचारने की नींव का काम करते हैं। माना जाता है कि जिन्होंने इन विषयों को पढ़ा है उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना पैदा हो गई है, एक यथार्थवादी दृष्टि अपनाने की क्षमता आ गई है, उनकी नींव मजबूत हो गई है, उनकी जमीन ऐसी बन चुकी है कि जिसमें वो अपने विचारों को डालकर, अपने विषय के बीजों को डालकर नए विचार पैदा कर सकेंगे। इसीलिए ये विषय रखे गए हैं, आप इन सबको पढ़ते रहे हैं। मुश्किल ये है कि आपने पढ़ा कैसे है, वो दिक्कत है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ मेल ऐसे आए कि फिर हम सोचे विचारें कैसे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन ठीक ठाक है। पढ़ा कैसे है वो एक संकट है जिसका समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन डिप्रेस्ड होने का कोई सवाल यहां खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही, इस पर हम लोग और बातें करेंगे। आप लोग मेल लिख रहे हैं, मैं उससे बहुत उत्साहित हूं। आप लोग अपनी बातें रखते रहिए, मुझे अलग अलग बिंदु मिलते रहेंगे और मैं उनका समाधान करता रहूंगा इस विषय पर। लेकिन हम लोगों की बातचीत इसी तरह से चलेगी और हो सकता है कि थोड़ी लंबी भी चले। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे ईमेल आए हैं, एक से एक अच्छे ईमेल आए हैं। किन किन के मैं नाम लूं, सिवाय यह कहने के कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सच पूछे तो बहुत बहुत आभार भी। ज्यादा कुछ कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आज मैं महेंद्र चावड़ा जो जोधपुर राजस्थान से हैं, उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी ओर से और अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से भी। और खासकर मुझे बहुत संकोच हो रहा है ये बताने में, और चूंकि मैं विशेष रूप से धन्यवाद उन्हें दे रहा हूं तो मुझे बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुझे लगेगा कि जैसे मैं ऋण नहीं हो पा रहा हूं, तो ऋण चुकाने के रूप में ही सही कि उन्होंने मेरे नाम से और मेरी पत्नी प्रीति के नाम से अपने जोधपुर में शैक्षणिक संबंधी पुरस्कारों की स्थापना की है और कल वे पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं। ये उनकी सहृदयता है, हम लोगों के प्रति विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, स्नेह का भाव है, या ये सारे मिले जुले भाव हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो सच पूछिए तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो अंदर को स्पर्श तो करती ही हैं। तो इस स्पर्श के प्रतिक्रिया के रूप में मैं एक बार फिर से अपनी ओर से और अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से महेंद्र जी को और उनकी पत्नी कीर्ति जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल गणतंत्र दिवस है, परसों फिर मुलाकात होगी, हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।